ओम शांति। हम सभी मधुबन पहुंच गए हैं। विशेष प्यारे बाप दादा से और हमारी दादियों से, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों से और इस बेहद के ईश्वरीय परिवार से मिलन मनाने के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बाबा ने हमें सत्य ज्ञान देकर जो नया अलौकिक ब्राह्मण जीवन दिया है, ईश्वरीय परिवार दिया है, उस परिवार के साथ न केवल वर्तमान जन्म में लेकिन पूरे चक्र में हमारा साथ रहे और ड्रामा के अंदर हम आपस में भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहें और पार्ट बजाते रहें, क्योंकि यही सब आत्माएं वर्ल्ड ड्रामा की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो जब लक्ष्य है हमारा भविष्य 21 जन्म सतयुग त्रेतायुग के और आगे भी ड्रामा में हम साथ साथ रहें और पार्ट बजाएं, एक दो से सुख पाएं, सुख दें और अपनी उन्नति करते रहें, तो उसके लिए अभी आवश्यक है इस अलौकिक जन्म के अंदर विशेष दो पुरुषार्थ हमें करने हैं। एक पुरुषार्थ है संस्कार परिवर्तन का, माना मुझे स्वयं के संस्कारों को बदलना है, क्योंकि ड्रामा में पार्ट प्ले करते करते कलयुग अंत पर हम पहुंच गए हैं, जहां आत्माएं तमोप्रधान स्थिति को प्राप्त हो गई हैं, जिसके कारण ही पिछली मुरली में भी बाबा ने बताया था कि तीन बातें हैं जो परेशान करती हैं। एक है चंचल मन, दूसरा है भटकती बुद्धि और तीसरा है पुराने कलयुगी संस्कार। चंचल मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सहज विधियां बताई हैं कि मन एक बच्चे के समान है। जैसे बच्चा चंचल होता है, तूफानी होता है, स्थिर नहीं बैठ सकता है, ऐसे ही मन की स्थिति भी है। तो मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए एक तो विधि बाबा ने हमें ये सिखाई है कि मन को बिजी कर दें। बच्चे को आप बिजी कर देंगे खेलने में, खिलौने में, तो वो मस्ती तूफान करना छोड़ देगा उस खिलौने को खेलने में बिजी हो जाएगा। तो हमें भी बाबा ने सेवा की प्रवृत्ति इसलिए ही दी है कि हम सेवा में व्यस्त रहेंगे तो व्यर्थ में हम नहीं जाएंगे, मन भटकने का कारण नहीं रहेगा क्योंकि हम व्यस्त हैं। इसलिए जो लौकिक में आवश्यक है वो कार्य वो जरूर हम करें, चाहे घर गृहस्थी के हो, नौकरी धंधे के हो, जो आवश्यक है वो कार्य हम करें और बाकी जो समय बचता है वो सेवा में हम व्यस्त हो जाएं, क्योंकि सेवा के द्वारा ही हम योग में जा सकेंगे। 24 घंटा योग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेवा के द्वारा ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि बाबा में जाती रहेगी। दूसरा है, जैसे घर में बच्चा छोटा है, चंचल है और मां को अपना काम भी करना है तो माताएं क्या करती हैं? बच्चे को बाप के हवाले कर देती है कि भाई थोड़ा टाइम आप संभालो तो मैं खाना बना लूं, कुछ काम कर लूं। ऐसे करती है ना माताएं? हाँ, तो हम भी मन को बाप के हवाले कर दे। मन मना भव बाबा कहते हैं ना, कि बाबा आप इस मन को थोड़ा समय संभालिए ताकि मैं और काम कर सकूं। तो बार बार बाप की गोद में मन को बिठा दे। बाबा का तो डायरेक्शन ही है, मेरे में मन लगा दो। तो हर बार बीच बीच में ये अभ्यास करते रहे कि बाबा ये मन अब आपके हवाले है, आप इनको संभाले, मैं ये निमित्त काम जो है वो कर लेती हूं। तो भी आप देखेंगे कि मन का भटकना बंद हो जाएगा। और तीसरी बात बाबा ने हमें ये सिखाई है, क्योंकि हलचल तब होती है, चंचलता तब होती है जब अशुद्धि उसमें आती है। जैसे पेट में हम खाना खाते हैं, पेट में भरते हैं, अगर हम कच्चा पक्का, बासी ताजा तला तीखा हर प्रकार का खा के पेट में भरेंगे तो पेट में शांति रहेगी? हाँ, गड़बड़ होने लगेगी ना, क्योंकि हमने हर प्रकार का मिक्स उसमें भर दिया। तो इसी प्रकार अगर मन के अंदर भी तेरी मेरी इसकी उसकी दुनिया भर की बातें अगर हम भरेंगे तो वो मन कैसे स्थिर रहेगा? उसमें गड़बड़ होगी, वो स्थिरता से रह नहीं सकेगा। इसलिए मन को स्वच्छ बनाएं। ज्ञान जो सत्य बाबा ने दिया है या जो यथार्थ राइट थिंकिंग है वो मन में हम रखेंगे तो अपने आप मन समझदार बनता जाएगा और चंचलता खत्म होती जाएगी। ये पुरुषार्थ हमें अंत तक करना होगा। इस प्रकार बाबा ने कहा भटकती बुद्धि, तो बुद्धि के लिए भी बाबा ने हमें लक्ष्मण रेखा खींच करके दी है कि अगर बुद्धि योग लगाना है तो एक निराकार बाप से लगाना है। ये मर्यादा बाबा ने खींच के दी है। दो तीन दिन पहले ही बाबा की मुरली में, पूरी मुरली उस विषय पर थी, बार बार बाबा ने कहा कि देहधारी को याद नहीं करना है, देहधारी को याद किया माना निष्फल, देहधारी पर आसक्त नहीं होना है, देहधारी पर बलिहार नहीं जाना होता है, देहधारी को याद करना माना दुर्गति को पाना। तो बाबा ने प्रतिदिन हमें बार बार ये बात समझाई है कि जबकि हम अशरीरी निराकार आत्मा हैं, तो हमारा बुद्धि योग भी निराकार अशरीरी विदेही बाप से ही होना चाहिए। और अगर हमें बुद्धि लगानी है तो या तो हम अपने घर से लगाएं, जहां हमें वापस जाना है। बाबा कहते हैं कि जहां जाना होता है वहां बुद्धि योग लग जाता है। तो अब हम बच्चों को बाबा ने प्रोग्राम दे दिया है कि अब वापस घर जाना है, तो घर से योग लग जाना चाहिए। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, अब तक तो बाबा ये कहते थे कि मौत सामने खड़ा है, आज तो बाबा ने कह दिया कि मौत सिर पर सवार है। तो ये टाइम का सिग्नल बाबा ने दे दिया है, तो जहां जाना है अपने असली घर, हमारा उस घर से बुद्धि योग लगे। या तो बाबा कहते हैं राजाई वर्षा सुखधाम से बुद्धि योग लगे। आज भी बाबा ने कहा ना कि पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, अब नई दुनिया नए दैवी संबंध से बुद्धि योग लगाओ। तो हमारा योग या तो सतयुग से हो, या अपने घर से हो, या एक बाबा से हो, और इनमें भी न लगे तो बाबा कहते हैं कि संगम युग से बुद्धि योग लगाओ, जो वर्तमान का श्रेष्ठ ड्रामा चल रहा है उस मधुबन प्यारे घर से बुद्धि योग लगाओ। तो बस बुद्धि के लिए ये लक्ष्मण रेखा बाबा ने खींच कर दी है कि इसके बाहर बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हमारा योग माना बुद्धि का अटेंशन, बुद्धि की आसक्ति, बस ये चार बातें हैं जहां लगी हुई हो, या संगम युग में, या बाबा में, या घर में, या राजाई में। तो अपने आप हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ बनती जाएगी। जो योगी की अवस्था गाई हुई है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए लेकिन हमारी प्रज्ञा, हमारा विवेक, हमारी दिव्य बुद्धि बदलनी नहीं चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। अक्सर जब परिस्थितियां अनुकूल हैं, वातावरण अनुकूल है, तब तो हमारा ईश्वरीय विवेक बना रहता है। लेकिन जब बातें आती हैं, विघ्न आते हैं, तूफान आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, उस समय किसी के संग में आकर या कोई वातावरण के प्रभाव में आकर, किसी की मत के प्रभाव में आकर, कोई भी दोष के कारण हमारा विवेक बदल नहीं जाना चाहिए। जो कल भी बाबा ने कहा कि या मन मत या मनुष्य मत में भटकते रहते हैं, बाबा ने कहा ना, मन अनेक भ्रमों में भटकता है, और वो भ्रम क्या है? मन मत और मनुष्य मत। क्योंकि मन भी संपूर्ण सतो प्रधान नहीं है, इसलिए मन के विचार या मन की इच्छाएं पूर्ण सत्य नहीं भी हो सकती है, इसलिए मन के कहे अनुसार भी हम नहीं चलेंगे। और मनुष्य के लिए भी हम जानते हैं कि मनुष्य अल्पज्ञ है, इसलिए मन मत और मनुष्य मत ही वो भ्रम है, भ्रमणा है, जिसमें हम भटक जाते हैं। तो हमें एक श्रीमत पर ही चलना है, तो हमारा विवेक सदा स्थिर रहेगा। कितना भी हमें कष्ट हो, अपमान हो, कुछ ना भी मिलता हो, तो भी हमारा विवेक बदलेगा नहीं, हम स्थित प्रज्ञा रख सकेंगे। और तीसरी जो सूक्ष्म बात है वो है पुराने संस्कार, जिसके विषय में बात करने के लिए अभी हम एकत्रित हुए हैं, संस्कार परिवर्तन की बात। जब संस्कार परिवर्तन की बात हम करते हैं तो इससे दो बात सिद्ध होती है कि वर्तमान संस्कार जो है वो हमारे ओरिजिनल नहीं है, उसमें परिवर्तन आया हुआ है। जरूर हमारे ओरिजिनल संस्कार और है, और अभी जो हमारे नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार जो संस्कार है वो परिवर्तन को पाए हुए संस्कार है, तो हम फिर से उसमें परिवर्तन करके अपने असली ओरिजिनल संस्कारों में आना चाहते हैं। क्योंकि संस्कार वो सूक्ष्म प्रभाव है कर्मों का, जो जन्म जन्मांतर बार बार करते रहने से आत्मा में रिकॉर्ड हो गया, दृढ़ बन गया। और ये हम आप सब जानते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो संस्कारों की प्रबलता अनुसार करता है। अगर हमारे में अच्छे संस्कारों की प्रबलता है तो हम अच्छे कर्म करेंगे। अगर तमोप्रधान संस्कारों की प्रबलता है तो हम तमोप्रधान कर्म करेंगे। इसलिए संस्कार ही हमें फिर वही कर्म करने के लिए बाध्य करते रहते हैं, मजबूर करते रहते हैं। तो संस्कार ही वो सूक्ष्म परिबल है जो फिर वही कर्म करने के लिए वो हमें विवश करता है, मजबूर करता है, बाध्य करता है। इसलिए संस्कारों को शुद्ध करना, दिव्य बनाना बहुत जरूरी है। अल्टीमेट आत्मा अपने साथ वही लेकर जाती है। इसलिए सबसे पहली बात, हमारे पास बाबा के सत्य ज्ञान की इतनी गहराई होनी चाहिए, इतनी विशालता होनी चाहिए, जो हम समझ सके कि मेरे अंदर राइट संस्कार कौन से हैं और गलत संस्कार कौन से। पहले इंसान को समझ में आना चाहिए। कई बार हम अपने को परिवर्तन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम समझते ही नहीं हैं कि मैं कोई रॉन्ग कर रहा हूं। तो हमारे पास रोज की मुरली के अध्ययन से ज्ञान की इतनी गहराई हो, जो हम समझ सकें कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। रोज बाबा हमें वही समझाते हैं। रोज की मुरली में बाबा क्या बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या यथार्थ है क्या अयथार्थ है, किसमें सार है क्या असार है, वही तो बाबा रोज समझाते हैं। इसलिए मुरली क्लास हमें इतना महत्व के साथ करना चाहिए और इतनी गहराई से उसका अध्ययन हो कि हमें स्वयं के बारे में स्पष्ट हो कि मेरे में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। क्योंकि रॉन्ग है ये समझेंगे तब तो उसको बदलने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि ये स्वीकार करो कि हम बुद्धू बन गए थे, पतित बन गए थे, हम पत्थर बुद्धि बन गए थे, तब तो पारस बुद्धि बनने का, पावन बनने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। अगर हमें यह है कि मैं तो अच्छा ही हूं, मैं तो ठीक ही हूं, मैं पहले से ही अच्छा हूं, तो हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ के लिए आगे रास्ता क्लियर नहीं समझ में आएगा। तो बाबा के ज्ञान के दर्पण में वो ज्ञान दर्पण हमारे पास इतना स्वच्छ और स्पष्ट हो कि मुझे मेरा चित्र, मेरी पर्सनालिटी का चित्र स्पष्ट समझ में आवे कि मेरे में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। वो समझने के बाद दूसरी बात कि हमें ये महसूसता हो, रियलाइजेशन हो कि जो गलत है संस्कार जो पतित संस्कार हैं, गंदी आदतें हैं, शुद्रपन के जो संस्कार है वो कितना मुझे नुकसान कर सकते। भल कोई भी ना जानता हूं, अंदर के तूफान को हम ही जानते हैं, लेकिन जैसे बाबा स्पष्ट हमें कहते हैं कि एक कमजोरी भी समय पर तुमको फेल कर देगी, समय पर धोखा दे देगी। वो एक कमजोरी ही माया के आने का दरवाजा है। इसलिए मुझे ये महसूसता हूं कि ये एक कमजोरी भी, एक गलत आदत भी, एक पतित पुराना संस्कार भी मुझे कभी भी ले डूबेगा मेरे किए करे पुरुषार्थ पर पानी फेर देगा। इसलिए हम मिथ्या संतोष न अनुभव करें कि वैसे तो मैं ओवरऑल ठीक हूं, बस एक ही तो मेरे में कमजोरी है। वैसे तो मैं ठीक ही हूं, बस एक ही तो मेरे में अवगुण है, एक ही तो मेरे में गलत आदत है। लेकिन वो एक कमजोरी पूरे रावण को वापस ला सकती है। बाबा कहते ना कि एक अंश फिर से पूरा वंश खड़ा कर देगा। और रावण के 10 शीश आप जानते हैं कि एक दो से जुड़े हुए हैं, एक भी अंदर घुसेगा तो 10 धीरे धीरे अपने आप अंदर घुस जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ये विकार जो है वो जहां जाते हैं वो मित्र मंडल परिवार सहित जाते हैं, वो अकेले नहीं आते। एक विकार पूरे परिवार को वापस लेके आता है, साथ साथ अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए एक तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो कि मुझे बनना है तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं यथाशक्ति जितना हो सके, नहीं, बनना है तो मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, बाप समान ही बनना है। इसलिए कोई एक भी संस्कार आदत गलत हो तो मुझे उसको खत्म करना ही है, क्योंकि समय पर ये एक कमजोरी मुझे फेल कर देगी। तो गहरी महसूसता हो कि ये कितना नुकसान कर सकती। और तीसरी बात कि ऐसी जिगरी रियलाइजेशन के बाद हम पूरे दिल से पुरुषार्थ करें उस संस्कार को बदलने के लिए, जो गुण और शक्ति धारण करने की जरूरत है, या जो स्वरूप और स्मृति का अभ्यास अपनाने की जरूरत है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे बाबा ने आज बताया ना कि पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, फिर काम विकार का दान दे दो, फिर क्रोध लोभ जाएंगे और तब आखिर नष्टो मोहा बन सकेंगे। आज बाबा ने कहा ना, तो इसी प्रकार अपनी कमजोरी को परखो कि मेरे में जो विकार है, अवगुण है, गंदी आदत है, संस्कार है, वो किस गुण और शक्ति के अभाव के कारण है। समझो, मुझे बार बार गुस्सा आता है, क्रोध के संस्कार को मैं बदल नहीं पाती हूं, तो मुझे समझना चाहिए कि मेरे अंदर कमी किस बात की है, डेफिशिएंसी किस बात की है, शांति और प्रेम के गुण की डेफिशिएंसी है, इसलिए मुझे बार बार गुस्सा आ जाता है। तो मुझे विशेष उस संस्कार को बदलने के लिए अपने शांत स्वरूप को और प्रेम स्वरूप को बार बार स्मृति में लाना होगा, अभ्यास में लाना होगा, क्योंकि वो शांति का गुण और शक्ति नहीं है, तब तो मेरे में अधीरता, जल्दबाजी, आवेश, गुस्सा आ जाता है। और वो शुद्ध आत्मिक प्यार का गुण नहीं है, इसलिए तो आत्माओं के नंबरवार कर्म, स्थिति, स्वभाव को मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूं। अगर सच्चा प्यार हो तो आपका अनुभव होगा कि जिससे हमारा प्यार होता है उनकी गलती को भी हम माफ कर देते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, समा देते हैं, फैलाते नहीं हैं, या उनसे हम थकते नहीं। तो मुझे अपने अंदर वो गुण और शक्ति के स्वरूप को बार बार इमर्ज करना होगा और उस गुण और शक्ति के सागर बाबा को उस रूप से याद करना। मान लो मेरी बुद्धि बार बार देहधारी में फंसती है, मुझे शरीरधारी के प्यार का आकर्षण होता है, तो मुझे अपने अंदर ओरिजिनल शुद्ध पवित्र स्वरूप को इमर्ज करने की आवश्यकता है और देह से डिटैच रहने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर ये दो चीज हम करेंगे कि बार बार देह भान से डिटैच आत्माभिमानी बनते रहेंगे, तो वो पुराने संस्कार को इमर्ज होने की मार्जिन नहीं मिलेगी और अंदर से मैं अपने शुद्ध ओरिजिनल पवित्र स्वरूप को बार बार बुद्धि में लाऊंगी, तो मुझे ये पक्का हो जाएगा कि पवित्रता मेरी ओरिजिनलिटी है। बाबा ने कहा ना कि कई बार ये मध्य युग के जो संस्कार है, देहाभिमान के कारण जो द्वापर युग के, कलयुग के विकारी संस्कार है, वो इतने पक्के हुए होते हैं कि हम एक घड़ी ये सोच लेते हैं कि पता नहीं ये बदलेंगे या नहीं। लगता है मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, लेकिन बाबा ने हमें कई बार मुरली में कहा है कि ये जो द्वापर युग के, कलियुगी विकारी शुद्रता के, पतितपने के जो संस्कार है, वो तुम्हारे संस्कार नहीं, क्योंकि तुम आत्माएं आदि अनादि स्वरूप में शुद्ध पवित्र स्वरूप है। तो हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप की इतनी स्पष्टता हो कि हम उन पुराने संस्कार से अपने को अलग कर सके कि ये मेरे संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार है, ये पुराने शूद्रपन के संस्कार है, ये इस नए ब्राह्मण जीवन के संस्कार नहीं है और अब मैं इनसे अलग हूं। तो अंदर से खुद को डिटैचमेंट आएगा और अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप को बार बार हम इमर्ज करेंगे तो वो संस्कार धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। पर ये पुरुषार्थ हमें बहुत लंबे समय तक बल्कि अंत तक करना होगा। बाबा साकार मुरली में ही कई विधि हमें बताते हैं कि माया का काम है तूफान लाना, लेकिन तुम्हारा काम है अंत तक ज्ञान और योग का पुरुषार्थ करते रहना। उस संस्कार के तूफान को हम उनका शिकार नहीं बन जाएं, इतना डिटैचमेंट अपने में लाएं कि हम खुद साक्षी होकर खुद के मन में उठे हुए माया के तूफान को देखें पर प्रभाव में नहीं आए। तो मुझे उसके लिए अपने आप के पीछे मेहनत करनी होगी और अपने को गलत रूप से चलाते रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। कई बार बाबा भी बताते हैं ना मुरली में कि हम खुद को चलाते हैं कि भाई चलता है, हर एक को ऐसा तूफान आता है, कौन संपूर्ण बना है, हर एक में कमजोरी है करके हम अपनी कमजोरी को पोषण देते रहते, दूसरों की कमजोरी की बात करके हम अपनी कमजोरी को बल देते रहते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की पहली शर्त है स्वचिंतन, स्वदर्शन और खुद के प्रति फोकस रहना। अगर हमने इधर उधर दूसरों को देखते हैं तो खुद की उन्नति हम नहीं कर सकते। तो ये है कि हम संस्कार को बदलें। और दूसरा पुरुषार्थ इस ब्राह्मण जीवन में है संस्कार मिलन, क्योंकि हमारा ज्ञान और योग प्रवृत्ति मार्ग का है। यहां हमें कोई अलग अलग रहकर तपस्या या सेवा नहीं करनी है, बाबा ने हमें प्रवृत्ति में रहते हुए योगी बनना कहा है, सेवा भी हमें संगठन में रहकर करनी है। इसलिए जहां संगठन में रहना है, प्रवृत्ति में रहना है, तो पुरुषार्थ और सेवा वहां ही हो सकेगी जहां आपस में संस्कार मिलन हम करेंगे। हमारे संस्कार एक दो के साथ हमें मिलाने होंगे, तो वो हम कैसे मिलाएंगे, क्योंकि हर आत्मा वैरायटी है। कल की मुरली में ही बाबा ने कहा ना कि एक ना मिले दूसरे से, हरेक के संस्कार अपने अपने हैं, तो कौन किससे मिलेगा, कौन किससे मिलेगा। मैं अपना संस्कार आपसे मिलाऊंगी, आप मेरा संस्कार मिलाएंगे नहीं, क्योंकि वहां तो हरेक का अहम बीच में आता है कि मैं क्यों उनसे संस्कार मिलाऊं। आप सोचेंगे हम क्यों इनसे मिलाएं, क्योंकि हरेक पुरुषार्थी है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो कौन किसके आगे झुकेगा, कौन किसका मानेगा, अहम आता है ना बीच में। इसलिए और ये भी हम जानते हैं कि अगर मैं अपने संस्कार में रहूंगी, आप अपने संस्कार में रहेंगे तो मिलन तो हो ही नहीं सकेगा, बाबा का कार्य भी नहीं कर सकेंगे, पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे। तो सहज विधि क्या है? सहज विधि ये है कि हम हरेक अपने संस्कार को बाबा के संस्कार से मिलाएं। आपस में मुझे आपसे, आपको मुझसे मिलने की बात नहीं है, क्योंकि हम अनेक हैं। कितनों से मिलाएंगे, कितनों से एडजस्ट करेंगे, मुश्किल लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि हरेक अपने संस्कार का मिलान बाप दादा के संस्कारों से करें, कि मुझे मेरे संस्कार से नहीं चलना है, मुझे बाप दादा के संस्कार जैसे संस्कार बनाकर चलना है। इसलिए बाबा हमें लक्ष्य देते हैं कि बाप समान बनना है। तो मैं हर घड़ी बाबा से वेरीफाई करती रहूं कि बाबा के संस्कार कौन से हैं, बाबा के गुण कौन से हैं, जैसे बाबा चलते हैं, चलाते हैं, ऐसे मुझे भी चलना है और चलाना है। बस, और किसी की बात नहीं है, मुझे अपना मैचिंग बाबा से करना है। तो अगर मैं अपने संस्कार बाबा से मिलाऊंगी, आप अपने संस्कार बाबा से मिलाएंगे, ये अपने संस्कार बाबा से मिलाएंगे, तो नेचुरली हरेक के संस्कार बाबा जैसे हो जाएंगे, तो हमारा आपस में मिलना तो ऑटोमेटिक सहज हो जाएगा, क्योंकि हम हरेक बाबा के संस्कारों का स्वरूप बन जाएंगे। और ओरिजिनली भी आप देखिए कि हम सब भी आपस में वैसे भी कब मिल सके हैं, जब हम हरेक बाबा से मिले, है ना। मैं आज बाबा की बनी, आप बाबा के बने, तब तो हम आपस में मिल रहे हैं। हम आपस में कोई व्यक्तिगत संबंध या हिसाब से तो नहीं मिले हैं, लेकिन मैं बाबा से मिली, जिस बाबा के कारण इस बेहद के परिवार से भी मेरा मिलना हुआ। तो ओरिजिनल तो बाबा है ना, जिनके साथ मिलने से ये पूरा परिवार हमें मिला है। तो अगर सदा हम ये लक्ष्य रखें कि मुझे बाबा जैसे संस्कार बनाने, बाबा जैसे शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुखदाता है, सदा पावन है, ऑल माइटी है, ये बाबा के गुण हैं, बाबा के नेचर है, मुझे ऐसा बनना है। तो जब मैं अपना नेचर बाबा जैसा बनाऊंगी, तो मेरा सबके साथ मिलकर चलना सहज हो जाएगा। जैसे बाबा निष्काम है, निस्वार्थ है, कल्याणकारी है, दाता है, रहम दिल है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो जब मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी करने के पीछे कोई कामना नहीं, सदा देने की भावना, कल्याण की भावना रहेगी, तो संस्कार कहाँ टकरेंगे, टकराव होगा ही नहीं। तो हमारा मिलकर चलना सहज हो जाएगा। और बाबा हम बच्चों से आखिरी रिजल्ट यही चाहते हैं ना, कि हम आपस में मिलकर चले। एक अकेले हम कितने भी अच्छे हैं, पर एक अकेला सब कुछ तो नहीं कर सकता है ना। आज एक ब्रह्मा बाबा नंबर वन आत्मा होते हुए भी अनेक ब्राह्मण बाबा ने तैयार किए, क्योंकि कार्य कोई एक ब्रह्मा से तो नहीं करना है, अनेक आत्माओं से कराना है, तब तो पूरी राजधानी स्थापन होगी। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कितनी भी अच्छी हूँ, लेकिन संगठन में अगर मैं अच्छाई से नहीं चलती हूँ तो काम कैसे होगा। इसलिए बाबा के खातिर, विश्व कल्याण के खातिर भी मुझे सबसे मिलकर चलना है, ताकि हम सब मिलकर एक बाबा का कार्य कंप्लीट कर सके और अपने आप को भी संपूर्ण बना सके। और हम जानते हैं कि हम यहाँ अपनी मनमर्जी के अनुसार चलने तो नहीं आए हैं ना। हमने ये अलौकिक जन्म लिया है, हम इस ईश्वरीय परिवार के बने ही इसलिए हैं कि हम श्रीमत पर चलें, बाबा जैसे बनते चलें और बाबा का कार्य करते चलें। तो अगर ये बात हम बुद्धि में रखते हैं तो हम प्रैक्टिकल रिजल्ट ला सकते हैं। जो सतयुग का गायन है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, वही सिचुएशन अभी हम बना सकते हैं कि कितनी भी कड़े संस्कार वाली आत्मा के साथ भी हम चल सकेंगे, शुभ भावना रख सकेंगे, टकराव को होने नहीं देंगे और बाबा के इस घर में, परिवार में, सेवा के क्षेत्र में शांति और प्रेम बना के रख सकेंगे। क्योंकि बाबा ने हमें विधि सिखाई है कि कोई कड़े संस्कार वाला है तो आप माइल्ड संस्कार के बन जाओ, जहां जरूरत है वहां शक्ति रूप बनो वरना स्नेह स्वरूप बनो। वैसे प्यार से चलो, अंदर से न्यारे हो जाओ। ये सारी मेथड बाबा ने हमें सिखाई है। जहां आवश्यकता हो साथी बनो, स्नेह और सहयोग दो, जहां वो नहीं स्वीकार हो रहा है वहां साक्षी हो जाओ और शुभ भावना रख लो। तो ये सारी मेथड अगर हम अपनाएंगे तो हम आपस में मिलकर चल सकेंगे और हमारी यूनिटी ही बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बन जाएगी। ओम शांति। आज वैसे भी दादी जी के प्रति भोग लगाया जाएगा, तो प्यारी दादी जी या हमारे बाप दादा जिनकी सदा ये इच्छा रही है कि हम प्यार से चलें, एक दो को सम्मान दें, सुख दें, ये जो सारी बाबा की इच्छाएं हैं, प्रैक्टिकल में हम व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य रख लें कि मुझे तो करना ही है ना। हम एक दो का कारण न दे, एक दो का बहाना नहीं बताएं। हमें कई बार आश्चर्य लगता है कि हमें बाबा ने ये परिवार इसलिए दिया कि एक दो के बल से हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें, एक दो के स्नेह और सहयोग से कठिन सेवा हम करें, लेकिन हम वो चीज न करके और ही एक दो को बहाना बनाकर पुरुषार्थ न करने का कारण बना देते, या अपनी अवस्था न बनने का कारण एक दो को बता देते हैं। तो ये तो यही कहा जाएगा कि बाबा ने कितने ऊंचे उद्देश्य से ये परिवार हमें दिया, पर हमने अपनी गलत वृत्ति के कारण उसका गलत उपयोग किया है। तो फिर से स्वयं को देखने की जरूरत है, बाबा को सामने रखकर और खुद में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो जरूर जो बाबा चाहते हैं, जो ज्ञान कहता है, वो हम कर सकेंगे। मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।